समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
श्रोताओं, आज विजयदशमी पर्व है। विजयदशमी, जिसे आमतौर पर दशहरा भी कहा जाता है, नवरात्रि अनुष्ठान और दुर्गा पूजा के समापन तथा बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। मान्यता है कि आज ही के दिन भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था। इस दिन रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले जलाने की परंपरा है। मान्यता यह भी है कि आज ही के दिन देवी दुर्गा ने नवरात्रि और 10 दिन के युद्ध के बाद महिषासुर राक्षस पर विजय प्राप्त की थी। देश भर के विभिन्न भागों में दशहरा अलग अलग ढंग से मनाया जाता है। आज के दिन शस्त्र पूजा का भी विधान है। ऐसी मान्यता है कि आज के दिन शुरू किए गए नए कामों में निश्चित रूप से ही विजय प्राप्त होती है। तो श्रोताओं, हम कामना करते हैं कि आपके जीवन में भी नित नए विजय के उजाले हों और आपका जीवन मंगलमय हो।
नमस्कार मुकेश, गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी हैप्पी नॉन वायलेंस डे टू एवरीवन ट्यून्ड इन। एज यू जस्ट पॉइंटेड आउट, दिस ग्रेट फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री एज रावण दहन एंड दुर्गा पूजा। एंड ऑफ कोर्स द फेस्टिवल रिफ्लेक्ट्स आवर नेशनल वैल्यूज। इट आल्सो टीचेस अस टू रिनाउंस नेगेटिव टेंडेंसीज लाइक एंगर, ईगो, एम्ब्रेस पॉजिटिव वंस लाइक करेज एंड डिटर्मिनेशन। एंड मुकेश, द नेशन इज पेइंग होमेज टू द फादर ऑफ द नेशन, महात्मा गांधी, ऑन हिज बर्थ एनिवर्सरी टुडे। And our nation is also remembering former Prime Minister Lal Bahadur Shastri on his birth anniversary today.
जी, श्रोताओं, जहां राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्मदिवस को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, क्योंकि महात्मा गांधी ने कई जाने और अनजाने वीरों के साथ भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया और अहिंसा के दर्शन का प्रचार किया। वहीं लाल बहादुर शास्त्री एक ऐसी हस्ती थे जिन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में देश को न सिर्फ गौरव का उपहार दिया बल्कि हरित क्रांति और औद्योगिकरण की राह भी दिखाई।
And also, Mukesh, another important event today, the Rashtriya Swayamsevak Sangh, RSS, completes its 100 years today. So this was founded in 1925 Nagpur, Maharashtra by Dr. Keshav Baliram Hejwar. The RSS was established as a volunteer-based organization with the goal of fostering cultural awareness, discipline, Namaste. Service and social responsibility among citizens.
जी. श्रोताओं, ये संगठन आरएसएस भारतीय संस्कृति और नागरिक समाज के मूल्यों को बनाए रखने के आदर्शों को बढ़ावा देता है। और साथ ही आपको बता दें कि आरएसएस विश्व का सबसे बड़ा स्वयंसेवक संगठन है। तो इसी प्रारंभिक जानकारी के साथ एक नए दिन की नई सुबह में आइए शुरुआत करते हैं समाचार पत्रिका कार्यक्रम आज सवेरे की। आज सवेरे के इस अंक में मैं हूं आपके साथ मुकेश कुमार बल और मेरे साथ हैं सुभद्रा रामाचंद्रन। सुभद्रा,
yes,
आपको मेरा नमस्कार।
Yes, we've already spoken. And so let's begin with the news headlines right now, right?
जी। सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के विपणन सत्र के लिए सभी अधिदेशित रबी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने कल ये निर्णय लिया। सबसे अधिक वृद्धि कुसुम फलों पर की गई है। कुसुम के न्यूनतम समर्थन मूल्य में प्रति क्विंटल 600 रूपये और मसूर दाल पर प्रति क्विंटल 300 रूपये की बढ़ोतरी की गई है। सरसों का न्यूनतम समर्थन मूल्य 250 रूपये प्रति क्विंटल, चना का 225 रूपये, जौ का 170 रूपये और गेहूं का 160 रूपये प्रति क्विंटल बढ़ाया गया है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संवाददाताओं को बताया कि संशोधित न्यूनतम समर्थन मूल्य से न सिर्फ किसानों को लाभ होगा बल्कि फसल विविधता को भी बढ़ावा मिलेगा, जिससे देश की कृषि अर्थव्यवस्था अधिक समायोजी बनेगी।
रबी सीजन की एमएसपी बढ़ाने से टोटल 84,263 करोड़ रुपीस हमारे किसान भाइयों के मेहनत के इसमें जाएंगे। टोटल एस्टिमेटेड प्रोक्योरमेंट रबी सीजन का 297 लाख मेट्रिक टन एस्टिमेट किया गया है और करीब 84,263 करोड़ रुपीस विल बी बेसिकली द अमाउंट पेड टू फार्मर्स।
A special Gram Sabha will be held today across 1 lakh tribal-dominated villages in Tholas, where communities will formally adopt the Tribal Village Vision 2030 Declaration. This move is part of the Adi Karmayogi Abhiyan, launched by the Ministry of Tribal Affairs. Adi Karmayogi Abhiyan marks the world's largest tribal grassroots leadership program, covering 11 crore citizens in 30 states and UTs. The government has declared the period from 15th November last year to 15th November this year as Janjatiya Gaurav Varsh. Prime Minister Narendra Modi had officially launched the Adi Karmayogi Abhiyan and Adi Seva Parv on the 17th of last month, focusing on responsive governance, community participation and youth leadership through the Adi Seva Parv program. The Minister of Tribal Affairs informed that each village will also establish an Adi Seva Kendra for public services, encourage voluntary service and use the AI-based Adivani app for multilingual communication. Further, the ministry stated that over 20 lakh officials, women and youth, have been trained as Adi Karmayogis to drive last-mile delivery of schemes and promote convergence under flagship programs like PM Janman and Dharti Aba Abhiyan 2.0.
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कच्छ के दो दिन के दौरे पर हैं। दशहरे के अवसर पर आज रक्षा मंत्री कच्छ सीमा पर स्थित लक्की नाला सैन्य चौकी में एक बहु एजेंसी सुरक्षा अभ्यास देखेंगे और शस्त्र पूजन करेंगे। वे जवानों के लिए कई नई सुविधाओं का उद्घाटन करेंगे और सैनिकों से बातचीत भी करेंगे। श्री सिंह का 5 महीनों में कच्छ का ये दूसरा दौरा है। इससे पहले उन्होंने मई में ऑपरेशन सिंदूर के बाद सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए भुज का दौरा किया था।
On the occasion of Gandhi Jayanti, as part of our podcast series, Person Behind the Story, we will broadcast a conversation with Sri V.P. Appukuttan Poduval, Padma Shri awardee, freedom fighter and social worker.
So, Kalapaji, from Calicut to Payanur. Payanur, he selected as the venue of the Satyagraha, because Payanur is that important. Even before that, Gandhi was beaten by somebody while he was taking allegiance through the public road. The Hindu religion cannot survive unless this casteism is removed.
To listen to the entire conversation, tune in to Akashwani FM Gold today morning at 9:10 a.m. You can also listen to it at 5:10 p.m. today evening on Akashwani FM Gold.
पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पिछले 3 दिन से चल रहे हिंसक विरोध प्रदर्शनों में 12 नागरिक मारे गए हैं। राजनीतिक और आर्थिक मुद्दों को लेकर हो रहे प्रदर्शन में कल नीलम ब्रिज और अन्य स्थानों पर पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में 8 लोग मारे गए। बाघ जिले के धीरकोट में 4 लोगों की मौत हुई, वहीं मुजफ्फराबाद और मीरपुर में 2-2 लोगों के मारे जाने की खबर है। ये विरोध प्रदर्शन पिछले सप्ताह खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान वायुसेना के J-17 लड़ाकू विमानों के हवाई हमलों में 30 नागरिकों के मारे जाने के बाद हो रहे हैं।
Moving on to the world of sports, in cricket, the 2-match test series between hosts India and West Indies is set to begin today. The first match will be played at the iconic Narendra Modi Stadium in Ahmedabad from 9:30 a.m. onwards. We have more from our sports desk.
India is all set to host West Indies for 2 test matches starting today. This also marks the beginning of India's home season under new skipper Shubman Gill, along with the absence of star players like R. Ashwin, Virat Kohli and Rohit Sharma in red ball cricket.
We are looking to play some hard grinding cricket, and I think we've got the skill set to be able to play on any kind of wicket or any situation, and the kind of talent that we have in the team. So we will be looking to dominate the series like any other series or any other match that we play.
India played their last test series against England 2 months back and managed to draw the series with 2-2. West Indies, on the other hand, are coming from a home series defeat to Australia. Next we have from ICC Women's ODI World Cup underway in India, where defending champions Australia defeated New Zealand by 89 runs in a one-sided match at Holkar Cricket Stadium in Indore last night. Opting to bat first, Australia made 326 runs with Ashley Gardner 115-run innings, who also got the Player of the Match award. In response, New Zealand got bundled out for just 237 runs. Last we have from chess, where Grandmaster P. Inayan of Tamil Nadu won the 62nd National Chess Championship in Guntur, Andhra Pradesh yesterday. He clinched the title by remaining unbeaten in over 11 rounds with 7 wins and 4 draws. Inayan also won a prize money of 6 lakh rupees despite tying with 15-year-old international master H. Gautam Krishna of Kerala, who won 5 lakh rupees by virtue of a better buckle score. Chirag Jha, Sports Desk.
कार्यक्रम में अब चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद के समाचारों की जानकारी दे रही हैं सुभद्रा।
Yes, thank you, Mukesh. Starting with the news from Chennai, the Tamil Nadu police has announced fresh recruitment to strengthen its bomb detection and disposal squad. The move comes ahead of the state's General Assembly elections scheduled for April next year, when the demand for bomb disposal personnel is expected to be higher. The Office of the Director General of Police Operations has said that the applications are being invited from ex-servicemen and ex-paramilitary personnel for 59 vacancies, including 43 head constables, 14 sub-inspectors and 2 inspectors. The recruitment will be on a one-year contractual basis and extendable if required. The Criminal Investigation Department of Tamil Nadu had arrested 24 more scamsters and dismantled 5 syndicates involved in the multi-crore Iridium scam. The racket was busted on 12th of September based on a complaint filed by the Reserve Bank of India. Subsequent searches at 43 locations across the state and 4 locations in neighboring states led to the apprehension of 30 suspects. After these arrests, the police secured 24 more individuals, including a key suspect, Swaminathan. Moving to news from Bengaluru, Karnataka Deputy Chief Minister D.K. Shivakumar has said that he will personally inspect pothole filling work in Bengaluru. Saying that the pothole filling is a continuous process, he added that the interaction with the public will be held to know about the quality of roadworks. The Deputy Chief Minister said that there are 1.20 crore vehicles in the city and a floating vehicle population of 50 lakh. The Shakti scheme of Karnataka government that provides free public transport for women has won the recognition by the International Book of Records, World Record of Excellence. The recognition comes for issuing over 500 crore free tickets to women passengers commuting in the government-run public transport buses. Earlier, the Shakti scheme was also recognized by the Golden Book of World Records. The State Transport Minister, Ramalinga Reddy, expressed his heartfelt gratitude to all the officers, employees and labour union leaders of 4 state road transport corporations for their contribution in achieving this feat. Moving to Hyderabad now. Hyderabad has immersed in the festival spirit of Dashera, with people from all walks of life geared up to celebrate Vijayadashmi today. The city is abuzz with festive celebrations, with a large number of devotees thronged Durga Puja pandals and temples to seek blessings for vehicles, coinciding with Ayudha Puja and Batukamma. The fruit and flower wholesale markets at different places in Hyderabad were jam-packed, while the local markets were teeming with residents purchasing puja material for Dashami celebrations. Besides the traditional market like Begum Bazaar, Sultan Bazaar, Begum Pet, Amir Pet and Monda Market, the upscale malls and large commercial establishments have been tastefully decorated with festive illumination and flowers. With Ayudha Puja observed yesterday, temples witnessed a rush of devotees and their vehicles. RTC buses flying within the city and districts were decked up with banana leaves and flowers. And Mukesh, over to you now for rest of the news.
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और खादी ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष मनोज कुमार ने कल राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली स्थित आईएनए दिल्ली हाट में विशेष खादी प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। 15 अक्टूबर तक चलने वाली इस प्रदर्शनी में देश के विभिन्न राज्यों के खादी संस्थानों और ग्रामोद्योगी इकाइयों के 86 स्टॉल लगाए गए हैं। प्रदर्शनी में खादी और ग्रामोद्योग उत्पादों की विस्तृत श्रृंखला प्रदर्शित की जा रही है, जिसमें साड़ियां, रेडीमेड वस्त्र, हस्तशिल्प वस्तुएं, हर्बल और आयुर्वेदिक उत्पाद, चमड़े के सामान, हस्तनिर्मित कागज उत्पाद, अचार, मसाले, साबुन, शैंपू, शहद बिक्री के लिए उपलब्ध हैं। दिल्ली नगर निगम द्वारा महात्मा गांधी की 156वीं जयंती के उपलक्ष्य में कल गांधी जयंती मेला का आयोजन किया गया। दिल्ली के महापौर राजा इकबाल सिंह ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविक सेंटर में मेले का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री सिंह ने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और चरखा भी चलाया। महापौर ने कहा कि ये मेला केवल एक आयोजन नहीं बल्कि गांधी जी के सत्य अहिंसा और सेवा के मूल्यों को आत्मसात करने का संकल्प है। इसके अलावा दिल्ली सरकार में मंत्री परवेश साहिब सिंह ने बताया कि राष्ट्रीय राजधानी में एशिया का सबसे बड़ा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट अब पूरी तरह से शुरू हो चुका है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि इस प्लांट की मदद से अब प्रतिदिन करोड़ों लीटर गंदा पानी ट्रीट होकर यमुना में जाएगा, जिससे नदियों की शुद्धता और दिल्ली वासियों का स्वास्थ्य दोनों सुरक्षित होंगे। श्री सिंह ने बताया कि यह प्लांट यमुना एक्शन प्लान 3 के तहत बनाया गया है। और अब रुक करते हैं मुंबई के समाचारों का। महाराष्ट्र में बाढ़ की स्थिति को देखते हुए राज्य के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि इस वर्ष सरकारी बसों का किराया नहीं बढ़ाया जाएगा। कल मुंबई में पत्रकारों से बातचीत में श्री शिंदे ने कहा कि उन्होंने परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक को महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा घोषित 10% किराया वृद्धि को रद्द करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि इस फैसले से निगम को लगभग 30 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। और महाराष्ट्र सरकार ने नागपुर और चंद्रपुर के बीच 204 किलोमीटर लंबे 4 लेन के कंक्रीट एक्सप्रेसवे के निर्माण को मंजूरी दे दी है। कल मुंबई में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट उप समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया। एक्सप्रेसवे की कुल लागत, जिसमें चंद्रपुर शहर के लिए 11 किलोमीटर लंबी लिंक रोड शामिल है, लगभग 2,353 करोड़ रुपए होने की उम्मीद है। और दशहरा समारोह से पहले मुंबई में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। मुंबई पुलिस ने इसके लिए 3,000 अधिकारियों के साथ 16,500 से अधिक कांस्टेबल तैनात किए हैं। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना गोरेगांव के नेस्को सेंटर में अपनी वार्षिक दशहरा रैली का आयोजन करेगी। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना यूबीटी मध्य मुंबई के दादर इलाके में शिवाजी पार्क में अपनी रैली आयोजित करेगी। इसके अलावा दुर्गा प्रतिमाओं का भी विसर्जन महाराष्ट्र के कई इलाकों में होगा। इस बीच महाराष्ट्र के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने दशहरा के पावन अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में राज्यपाल ने सभी के लिए शांति, सुख और समृद्धि की कामना की। और कोलकाता और पश्चिम बंगाल के अलग अलग हिस्सों में महात्मा गांधी की 156वीं जयंती मनाई जा रही है। पश्चिम बंगाल सरकार इस अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर रही है। और अब कार्यक्रम में बात महानगरों के मौसम की। दिल्ली में आज आमतौर पर बादल छाए रहेंगे तथा हल्की वर्षा हो सकती है। यहां का न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। उधर मुंबई में भी सामान्य रूप से बादल छाए रहने और मध्यम बारिश होने की संभावना है। शहर का न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। कोलकाता में आमतौर पर बादल छाए रहने और गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। और अब कलकत्ता, चेन्नई और बेंगलुरु के मौसम का हाल सुभद्रा से।
Yes, Chennai is expected to have a partly cloudy sky with the possibility of moderate rain or thunderstorm. Minimum temperature was 26 degrees Celsius, maximum will be around 32 degrees. Bengaluru is expected to have generally cloudy sky with light rain. The minimum temperature was 20 degrees Celsius, maximum will be around 29 degrees. Hyderabad is also expected to have generally cloudy sky with one or two spells of rain or thunder showers. The temperature will hover between a minimum of 23 degrees Celsius, maximum of 32 degrees Celsius. And so, Mukesh, we are getting to the other section now, the very important section. And today is, of course, is our Peace Day, right? Peace, of course. There are two quotes I want to start this item with. Peace is not the absence of conflict, but the ability to cope with it. Peace cannot be kept by force. It can only be achieved by understanding, said Gandhiji. Yes, and today is the International Day of Non-Violence. जी. It is observed this day, the date of birth of father of the nation, Mahatma Gandhi.
जी. और अब इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और सबसे पहले बात करते हैं भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत 1952 में आज ही के दिन हुई थी।
1836, naturalist Charles Darwin returned to England after a five-year journey on the HMS Beagle, on which he gathered specimens and observation that led to his theory of evolution by natural selection.
श्रोताओं, 1961 में बंबई में शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का गठन भी आज ही के दिन हुआ था।
And 1954 this day, former French possession of Chandannagar was made part of West Bengal. Located on the western bank of Hooghly River, the town was one of the five settlements of French India. The city, of course, has a unique culture due to the fusion Bengali and French culture, different from other cities in West Bengal. And 1957 this day, the British-American war classic, The Bridge on the River Kwai, had its world premiere. It later won the Academy Award for Best Picture.
1971 में तत्कालीन राष्ट्रपति वीवी गिरी ने गांधी सदन के नाम से प्रसिद्ध बिड़ला हाउस को आज ही के दिन देश को समर्पित किया था। यहीं पर महात्मा गांधी की हत्या हुई थी। इसके अलावा 2004 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने कांगो में 5900 सैनिक भेजने का प्रस्ताव मंजूर किया था।
And 1959, the science fiction anthology TV series The Twilight Zone debuted and later became hugely popular.
2006 में दक्षिण अफ्रीका ने परमाणु ईंधन आपूर्ति मामले पर भारत को समर्थन देने का फैसला किया।
And 1965 this day, players of University of Florida tested Gatorade in a football game, which later became a global sports drink. The drink was created to replace fluids lost from sweating.
कार्यक्रम में अब बात उन महानुभावों की जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन। तो इस कड़ी में सबसे पहले बात करते हैं राजा रवि वर्मा के बारे में। श्रोताओं, आज राजा रवि वर्मा की पुण्यतिथि है। वे एक सुविख्यात चित्रकार थे। उन्होंने भारतीय साहित्य और संस्कृति के पात्रों का चित्रण किया। उनके चित्रों की सबसे बड़ी विशेषता हिंदू महाकाव्यों और धर्म ग्रंथों पर बनाए गए चित्र हैं। अभी कुछ समय पहले ही राजा रवि वर्मा के जीवन पर आधारित एक फिल्म भी आई थी रंगरसिया के नाम से। तो सुनते हैं उसी फिल्म का ये शीर्षक गीत। पुण्यतिथियों में अगला नाम है राजकुमारी अमृत कौर का। वे भारत की एक प्रख्यात गांधीवादी स्वतंत्रता सेनानी और एक सामाजिक कार्यकर्ता थीं। राजकुमारी अमृत कौर स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय मंत्रिमंडल में 10 वर्ष तक स्वास्थ्य मंत्री रहीं। उन्हें देश की पहली महिला कैबिनेट मंत्री होने का सम्मान भी प्राप्त है। राजकुमारी अमृत कौर कपूरथला के शाही परिवार से ताल्लुक रखती थीं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के प्रभाव में आने के बाद उन्होंने भौतिक जीवन के सभी सुख सुविधाओं को छोड़ दिया और तपस्विनी का जीवन अपना लिया। वे राज्यसभा की सदस्य भी रहीं। वर्ष 1930 में दांडी मार्च के समय राजकुमारी अमृत कौर ने गांधी जी के साथ यात्रा की और वे जेल भी गईं। उन्होंने वर्ष 1927 में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना की। वर्ष 1950 में इन्हें विश्व स्वास्थ्य संगठन का अध्यक्ष बनाया गया। ये सम्मान हासिल करने वाली वे पहली एशियाई महिला थीं।
And friends, tributes, this is dynamic rock and roll hero Tom Petty, who led his band The Heartbreakers from 1976 until his death on 2nd October 2017. He formed the band in 1976. He previously led the band Mudcrutch, member of the late 1980s supergroup The Traveling Wilburys, and had success as a solo artist. A big hit from him. Here goes Free Falling for Tom Petty.
And the rocks might melt, and the seed may burn.
आज पुण्यतिथि है ब्रिटिश शासन के अधीन आईसीएस अधिकारी और भारतीय रिजर्व बैंक के तीसरे गवर्नर रहे चिंतामणि द्वारकानाथ देशमुख की। ब्रिटिश हुकूमत ने उन्हें सर की उपाधि दी थी। उन्हें वर्ष 1975 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्होंने कई पुस्तकें भी लिखी। और अब बात कार्यक्रम में जन्म जयंतियों की। श्रोताओं, आज जयंती है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की। उन्हें ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का नेता और राष्ट्रपिता माना जाता है। वर्ष 1869 में आज ही के दिन उनका जन्म हुआ था। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उन्हें बापू कहकर भी संबोधित किया जाता है। राजनीतिक और सामाजिक प्रगति की प्राप्ति हेतु अपने अहिंसक विरोध के सिद्धांत के लिए बापू को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त हुई। वे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक महान और आध्यात्मिक नेता थे। साबरमती आश्रम से उनका अटूट रिश्ता था। इस आश्रम से महात्मा गांधी आजीवन जुड़े रहे, इसीलिए उन्हें साबरमती का संत उपाधि भी मिली।
दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती
श्रोताओं, आज ही जयंती है प्रसिद्ध भारतीय राजनेता, महान स्वतंत्रता सेनानी और भारत के दूसरे प्रधानमंत्री रहे लाल बहादुर शास्त्री जी की। वर्ष 1904 में आज ही के दिन उनका जन्म हुआ था। जून 1964 से 11 जनवरी 1966 को अपनी मृत्यु तक लगभग 18 महीने वे भारत के प्रधानमंत्री रहे। इस प्रमुख पद पर उनका कार्यकाल अद्वितीय रहा। शास्त्री जी ने काशी विद्यापीठ से शास्त्री की उपाधि प्राप्त की। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद शास्त्री जी को उत्तर प्रदेश के संसदीय सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। गोविंद बल्लभ पंत के मंत्रिमंडल में उन्हें पुलिस और परिवहन मंत्रालय सौंपा गया। परिवहन मंत्री के कार्यकाल में उन्होंने पहली बार महिला कंडक्टर्स की नियुक्ति की थी। पुलिस मंत्री होने के बाद उन्होंने भीड़ को नियंत्रण में रखने के लिए लाठी की जगह पानी की बौछारें करने का प्रयोग आरंभ कराया। वे एक ऐसी हस्ती थे जिन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में देश को न सिर्फ सैन्य गौरव का उपहार दिया बल्कि हरित क्रांति और औद्योगिकरण की भी राह दिखाई। शास्त्री जी किसानों को जहां देश का अन्नदाता मानते थे, वहीं देश के सीमा प्रहरियों के प्रति भी उनके मन में अटूट प्रेम था।
Birthday of Sting, alias Gordon Sumner, British singer-songwriter known both for being the front man of the band and the Police, and for his successful solo career that followed. His musical style was distinguished by its intermingling of pop, jazz, world music, classical, and Sting has also scored for many movie soundtrack. This is a big time hit of Sting, friends. It's called Every Breath You Take. Here goes. American singer-songwriter arrived after club-hopping all over New York in the 1960s, made a name for himself as one of the finest songwriters in the all-American folk rock scene. His songs were introspective, thought-provoking, inspirational. Many happy returns to Don McLean. He's well known for his mega hit American Pie, and that's what you're listening to here right now.
आज ही जयंती है बांग्ला और हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध निर्देशक रहे तपन सिन्हा की। इन्हें 2006 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिला। तपन सिन्हा की फिल्में भारत के अलावा बर्लिन, वेनिस, लंदन, मॉस्को जैसे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों में भी सराही गईं। तपन सिन्हा ने हमेशा कम बजट की फिल्में बनाई। शैलजानंद मुखर्जी की रचना कृष्णा पर उनकी फिल्म उपहार लोकप्रिय रही। कार्यक्रम के अंत में अपने श्रोताओं संग मना लेते हैं भारतीय हिंदी फिल्म की प्रसिद्ध अभिनेत्री, निर्देशक और निर्माता दादा साहेब फाल्के पुरस्कार विजेता आशा पारेख का जन्मदिन। आज ही के दिन 1942 में उनका जन्म हुआ। आशा पारेख ने शमी कपूर, शशि कपूर, धर्मेंद्र, देवानंद, अशोक कुमार जैसे मजे हुए कलाकारों के साथ काम किया। आशा पारेख द्वारा अभिनीत कुछ मुख्य फिल्मों के नाम हैं: मैं तुलसी तेरे आंगन की, फिर वही दिल लाया हूँ, कटी पतंग, मौसम, कन्यादान, आन मिलो सजना, तीसरी मंजिल, लव इन टोक्यो, मेरा गांव मेरा देश, आया सावन झूम के, बिन फेरे हम तेरे, उपकार आदि। न जाने कितनी ही प्रसिद्ध फिल्मों में आशा जी ने अपने अभिनय की छाप छोड़ी और दर्शकों के दिल पर राज किया। अब आज का विचार कि जीवन की किताब में धैर्य का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि धैर्य ही हर पन्ने को बांध कर रखता है। इसी विचार के साथ अनुमति दीजिए मुकेश और सुभद्रा को आज सवेरे कार्यक्रम यहीं संपन्न करने।
थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे, नमस्कार।